Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sundaramurthy Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम जिस महान संत या शिव भक्त की कहानी सुनेंगे उनका नाम सुंदरमूर्ति नायनार है। अपर यानी कि तिरुनावकासुर जिस तिरुमुनई पाड़ी क्षेत्र में अवतरित हुए थे उस पावन क्षेत्र के तिरुनावलूर में शैव द्विज कुल में चडेनार के पुत्र के रूप में नंबियारूर यानी कि सुंदरमूर्ति नायनार का जन्म हुआ था। नंबियारूर का विवाह पुत्तूर के चंड कवि शिवाचारी की पुत्री के साथ संपन्न होने वाला था कि विवाह मंडप में एक वृद्ध ने आकर विवाह संस्कार रुकवा दिया। उन्होंने एक ताड़पत्र दिखाया जिसमें नंबियारूर के दादा ने लिख कर दिया था कि वे और उनकी संतति उस वृद्ध के दास हैं। पंचायत में इस ताड़पत्र को दिखाकर ग्राम सभा में वृद्ध ने अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया। यह एक विचित्र बात थी कि एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण ने दास बना लिया। लोगों के पूछने पर कि वे ब्राह्मण कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वे शिव मंदिर में जाकर अंतर्धान हो गए। नंबियारूर समझ गए कि मुझे दास बनाने वाला स्वयं भगवान ही है। उन्होंने वृद्ध के महत्व को जाने बिना उन्हें पागल विकंदावादी कहा था। इस पर वे पश्चाताप करने लगे। आरूरल के समक्ष पवित्र वेदों के उद्घोषक शिवजी ने आकाशवाणी की, चूंकि तुमने बड़े बड़े बोलों से हमें गाली दी थी इसलिए बड़बोले भक्त बनकर तमिल भाषा में हमारी स्तुति करो। नंबियारूर ने अपनी लघुता और प्रभु की महानता पर विचार करते हुए पूछा, तुम्हें किन शब्दों से मैं से गाऊं हे प्रभु? भगवान ने कहा, तुमने मुझे पागल कहा था इसलिए उसी नाम से प्रारंभ करो। इस आदेश को स्वीकार करते हुए सुंदरमूर्ति ने स्तुति गान शुरू किया। पित्ता यानी कि पागल, पिरेचूड़ी यानी कि चंद्रकला धारण करने वाले, पिरमान मतलब हे महाप्रभु, इस वाक्य से उन्होंने अपने गायन की शुरुआत की थी। नंबियारूर समझ गए थे कि भगवान ने उन्हें अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिया है और उनका उद्धार किया है। वे भिन्न भिन्न धामों में जाकर भगवान शिव का कीर्तिगान करने लगे। इसी क्रम में वे तिरुवारूर पहुंचे और भगवान के संकेत से देवदासी कुल में उत्पन्न परवयार नामक कन्या से विवाह करके वहीं रहने लगे। तिरुवारूर के प्रवास काल में नंबियारूर प्रतिदिन मंदिर में वाल्मीकि नाथ शिवजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। मंदिर में प्रवेश करते ही वे द्वार से थोड़ी दूर बने देवाचार्य मंडप में रहने वाले भक्तों की वंदना किए बिना अंदर चले जा रहे थे। वहां बैठे विरन मिंडर नामक भक्त ने जब यह देखा तो घोषणा की, देवाचार्य मंडप में निवास करने वाले शिव भक्तों की वंदना किए बिना उनकी अवहेलना करने वाले बड़बोले भक्त को मैं बहिष्कार करता हूँ और ऐसे भक्त को अपना दास बनाने के लिए ग्राम सभा में बात करने वाले भगवान को भी मैं बहिष्कार करता हूँ। वास्तव में सुंदर स्वयं को प्रभु के दासों के चरणों के योग्य भी नहीं समझते थे, पर यह घोषणा सुनकर भक्तों के प्रति बार बार दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने फिर तोंड तो गई यानी कि भगवान के भक्तों की मंडली का स्तुति गान किया जो कि तिल्लईवाल अंदनरतम अडियारकुम अडियेन पंक्ति से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है, मैं तिल्लई यानी कि चिदंबरम के निवासी भक्तों के दासों का भी दास हूँ। इस स्तुतिगान में प्राचीन काल के और अपने युग के भी 63 प्रभु भक्तों का नाम गुण सहित गायन कर उन्होंने रेखांकित किया कि मैं सभी भक्तों का दासानुदास हूँ। इसके बाद परवयार के साथ जीवन व्यतीत करते हुए सुंदरमूर्ति नायनार को चेरभूमि के भक्त भगवान के अनन्य सेवक वहां के नरेश चेरमान पेरुमाल की मैत्री का लाभ हुआ। ये अनेक बार वहां से चेरभूमि गए और उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर तिरुवारूर लौटे। चेरमान पेरुमाल भी सुंदरमूर्ति से मिलने अनेक बार तिरुवारूर आए थे। विविध स्थानों पर जाकर प्रभु विग्रहों के समक्ष स्तुतिगान करते हुए सुंदर जब तिरुवोत्तियूर में पड़म पक्कनाथ शिवजी के दर्शन करके लौट रहे थे तो मार्ग में इनकी भेंट चंगिलियार नामक देलाल कुल की कन्या से हुई। चंगिलियार को पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा प्रबल रूप से उनके हृदय में जागृत हुई। वे भगवान से इसके लिए अनुरोध करने लगे। अपने मित्र को संकट में फंसाकर उसी में आनंद लूटने की इच्छा से भगवान ने एक खेल खेला। चंगेलिया ने नंबियारू से कहा कि मैं इस शर्त पर आपसे विवाह करूंगी कि आप वचन दें कि मुझे कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। नंबियारू ने प्रेमवश वह शपथ ले ली, विवाह हो गया। दिन ब दिन बीतते गए। एक दिन उन्हें स्मरण आया, तिरुवारूर में बसने वाले भगवान को, मेरे अपने मित्र को मैं कैसे भूल गया। वे तुरंत ही तिरुवारूर के लिए चल पड़े। शपथ का उल्लंघन करने के कारण तिरुवक्कीयूर की सीमा पार करते ही आरूर की दोनों आंखें दृष्टिहीन हो गईं। फिर भी त्यागेश शिव से मिलने के संकल्प में दृढ़ भाव से नंबियारू अपने साथियों की सहायता से मार्ग के मंदिरों में सुदिकान करते हुए तिरुवारूर की ओर बढ़ते रहे। मार्ग में कांचीपुरम में देवी की कृपा से उनके बाएं नेत्र में ज्योति लौटी। इसके बाद तिरुवारूर पहुंचकर एक आंख से भगवान के दर्शन कर गीत दशक गाया, जिसका मूल स्वर था, मैं किसी अन्य के पास न जाने वाला आपका सेवक हूं। जब आपके सेवक भक्त अपने कष्ट और संकट का निवेदन करते हैं तब आप मौन ही रहते हैं। हे तिरुवारूर के प्रभु, आप दीर्घायु हो। गीत दशक के समाप्त होते ही प्रभु कृपा से उनके दूसरे नेत्र की ज्योति भी लौट आई। इसके बाद उन्होंने चिरकाल के विरह से पुष्ट अपनी पत्नी परवियार को समझाने लगे कि स्वयं भगवान को अपने दूत के रूप में भेजा। परवियार के विरह जनित रोष को शांत करके फिर उनके साथ रहते हुए वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में कोयम्बतूर के पास अविनाशी में पाया कि एक बालक मगरमच्छ द्वारा निगला जा चुका था। प्रभु स्तुति के गीतों का गायन कर उन्होंने उस बालक को यमलोक से बचाकर मगर द्वारा वापस उगलवा दिया। बच्चे के माता पिता उनके गुणों का गान करने लगे। तदुपरांत सुंदर चिरमान परमान से मिलने और उनके पास गए और कुछ दिन उनके सत्संग में रहे। चेरभूमि के मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए वे तिरुवंचिकुलम पहुंचे और भगवान की सन्निधि में तल्लैकुत तल्लैमाले से प्रारंभ कर 10 पदों का गायन किया। इन पदों में उन्होंने कहा, शिव ने मेरा सृजन किया, उस सृष्टि के रहस्य को जानकर उनके सर्वनिम स्वर्णिम चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए मैंने गीत रचना की। क्या आश्चर्य, कुत्ते सम मुझे सम्मान देकर स्वर्ग निवासी देवताओं में मेरा आदर सत्कार किया। उसी क्षण उनके मन में हिलोक लीला समाप्त कर लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। ईश्वर कृपा से तत्काल ही कैलाश से एक धवल वर्ण का हाथी आया, जो कि पूरी तरह सफेद था। उस पर आरूढ़ होकर वे देवों के संग कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इधर चिरमान पिरमाल ने ज्ञान योग से जान लिया कि मित्र सुंदरर कैलाश की ओर जा रहे हैं। वे भी तुरंत एक घोड़े पर सवार होकर तिरुवंचिकुलम पहुंचे और उस घोड़े के कान में पंचाक्षत मंत्र का उच्चारण किया। तुरंत वह घोड़ा भी श्वेत हाथी का पीछा करते हुए कैलाश की ओर चल पड़ा। दोनों कैलाश पहुंचकर शिव की दिव्य लीला में लीन हुए। इस घटना को एक सहस्त्र से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, पर सुंदर के अलौकिक गुणों और महत्व को संसार अभी पूरी तरह जान नहीं पाया। वे प्रभु की सखा भाव से भक्ति करते थे, जो वेशभूषा अपने विवाह के अवसर पर प्रभु द्वारा दास बनाए गए जाने पर पहने हुए थे। जन्म भर उसी प्रकार की वेशभूषा में रहे। उनका काव्य तमिल के शैव भक्त साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है, पर खेद है कि आज उनके जन्मस्थान नावलूर के मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। उस महान भक्त की स्मृति संजोए रखने के लिए इन मंदिरों का पुनर्निर्माण और सम्यक व्यवस्था आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।